ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए।
मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे।
श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे संसद के समय को अपनी विफलताओं से छुपा रहे हैं। पिछले सत्र में संसद सत्र को बाधित करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र देश की लोकतंत्र यात्रा का महत्वपूर्ण गंतव्य बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2029 के चुनावी वर्ष में दल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन तब तक सभी को देश, युवा और किसानों के सशक्तिकरण में शामिल होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। भारत ने विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था का दर्जा बनाए रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुपात 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक 4,500 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ढाका में भारतीय उच्चायोग सीमा चौकी तक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित यात्रा का प्रबंध कर रहा है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकरणों, बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शेष विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क में है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। श्रावण मास में होने वाली ये वार्षिक यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। श्रीलंका में खेले जा रहे एशिया कप 2020 महिला क्रिकेट में कल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हरा दिया। आज ग्रुप बी में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच दिन में 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।